ठगी को लाया गया और कहा कि तू अपनी धर्म संस्कृति की बात को भूल जा। लेकिन ये बंदा बैरागी अपने रास्ते पर अड़िग रहा है, रास्ते से हटाने यहां तक कि बंदे बैरागी को सूली के ऊपर लटका दिया। जिस समय सूली पर लटकाए अपनी धर्म संस्कृति के लिए फिर भी हंस रहा है, कहता है मुझे धर्म के ऊपर मरने में आनंद है, मरने में खुशी है, लेकिन धर्म दीन ईमान को छोड़ने में मुझे कोई खुशी नहीं है। बंदे बैरागी के सामने बंदे बैरागी के लड़के को लाया गया और सामने पर कत्ल कर दिया। कत्ल करने पर भी बंदा बैरागी हंस रहा है, कहते हैं कि वो जो कत्ल करने वाले कहते हैं कि इसका मतलब बंदा बैरागी को भी पता नहीं है कि इसका बेटा मार दिया है, नीचे से खून उठाया इसके बेटे का और खून उठाकर बंदे बैरागी के मुंह पर छींटे मारे गए। फिर भी हंस रहा सूली पर लटका हुआ। कहते हैं बंदे बैरागी की संडासियां लेकर के खाल को खींचा गया, सरिया लाल करके पैरों से कंधाओं तक पार निकाल दी गई, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति के लिए फिर भी हंसता रहा। भगत सिंह कहता है रे जज साहब, हमारे बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ करके देख, इतनी आपत्तियां सहने के बाद भी हंस रहे हैं और हम क्या रो सकते हैं। कहते हैं एक दिन तो वो आया जब सरदार भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। जिस समय फांसी के तख्ते पर ले जाकर के खड़ा किया, जेलर भगत सिंह से एक बात पूछ बैठा है। भगत सिंह से कहता है जेलर के, भगत सिंह अंतिम समय पर हर व्यक्ति की इच्छा पूरी की जाती है, तेरी भी कोई ख्वाहिश है तू भी अपनी इच्छा बता दे। सरदार भगत सिंह कहता है मेरी दो इच्छाएं हैं, अगर तुम मेरी दो ख्वाहिशें पूरी कर दो तो मैं बड़ी खुशी के साथ मर जाऊंगा। कहने लगे बताओ। सरदार भगत सिंह कहता है सोच लेना कभी इच्छा पूरी ना हो। कहने लगे ये हमारा कर्तव्य बनता है इच्छा पूरी करना मरने वाले की। कहने लगे कर दोगे? कहने लगे बिल्कुल। सरदार भगत सिंह कहता है तो पहली इच्छा तो मेरी यह है कि आज ही तुम भारत देश खाली करके अपने वतन चले जाओ। जब सरदार भगत सिंह ने कहा कि आज ही तुम भारत देश को खाली करके अपने देश को लौट जाओ, ये जेलर कहता है कि भगत सिंह ये इच्छा तो तुम्हारी पूरी नहीं कर सकते। जब इसने कहा कि भगत सिंह तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो भगत सिंह कहता है फिर दूसरी इच्छा तुम्हारी बाप भी पूरा नहीं करेगा। कहते हैं चल एक बात तो बता भगत सिंह। जेलर कहता है चल इच्छा पूरी तो नहीं हो पा रही, लेकिन तू कम से कम एक बात तो बता दे, तुझे फांसी के तख्ते पर भी हंसी आ रही है, तेरा वो गुरु कौन है जिसने तुझे शिक्षा दी है? कहते हैं आज तो जब गुरु का नाम लिया, भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। जिस समय भगत सिंह की आंखों में आंसू आए और रोने लगा, जेलर कहता है इसका मतलब तू भगत सिंह ये सोच रहा था कि तुझे फांसी नहीं लगेगी, तुझे फांसी की याद अब आई है, इसका मतलब अब तुझे रोना आया है कि अब तू बचेगा नहीं। जिस समय इस बात को कहा, भगत सिंह रो करके कहता है रे जेलर, मैं फांसी के मरने से नहीं रो रहा, मुझे फांसी लगेगी ये गम नहीं है। कहने लगे और? बोले आज दुख मुझे ये है कि तूने आज मुझसे मेरे गुरु का नाम पूछ लिया। कहने लगे क्यों? गुरु का नाम नहीं बताना चाहता? बोले नाम तो बताना चाहता हूं, लेकिन दुख एक बात का है मुझे। कहने लगे क्या? भगत सिंह रो करके कहता है
जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक। गुरु बिरजानंद जी ने जिनको वैदिक मर्म सिखाया, करना वेद परिचार जगत में यही धर्म बताया, रहे ब्रह्मचारी आयु भर पर विवाह नहीं करवाया, सभी विरोधी रहे ऋषि के फिर भी ना घबराया, सभी विरोधी रहे ऋषि के फिर भी ना घबराया, किसी नेता ने देश की खातिर जहर के प्याले पिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, ऋषिवर।
और भगत सिंह कहता है मेरा गुरु कितना स्वाभिमानी है।
एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से अर्ज मेरी स्वीकार करो। एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से अर्ज मेरी स्वीकार करो। राज विदेशी रहे हमेशा प्रभु से ये फरियाद करो। होकर निडर कहा ऋषिवर ने मत भारत बर्बाद करो। जहाँ से आए जाओ वहीं पर देश मेरा आजाद करो। आर्यों के लिए ये भूमि है और किसी के लिए नहीं।
आचार्य जी आ चुके हैं, खड़े होकर के उनका स्वागत करें।
आर्यों के लिए ये भूमि है और किसी के लिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक।
और कहा कि मेरे गुरु की बात कोई तो सुन करके, मेरे गुरु ने जो बात कही,
अच्छा नहीं होता राज विदेशी ऋषि ने ये प्रचार किया। अच्छा नहीं होता राज विदेशी ऋषि ने ये प्रचार किया। ऋषि दयानंद की लेखनी ने भयंकर प्रहार किया। लाला जी ने स्टेशन पर साइमन का बहिष्कार किया। पुलिस ने भीड़ भगाने को तब लाठियों का वार किया। जान खपा दी देश की खातिर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक।
और कहते हैं जिस समय लाठियों का वार हुआ लाला लाजपत राय के ऊपर, वो प्यारे गुरु के शब्दों को सुनकर के ही तो आगे बढ़े और उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और लाठी लगने पर गिर करके लाला लाजपत राय ने एक बात कही।
आगे चलकर ये अफसाना वीरों की तफसील बने। आगे चलकर ये अफसाना वीरों की तफसील बने। मेरे जिस्म पर एक एक लाठी गोरों के कफन की कील बने। देख न गोरों के संग में का ले नागों का जंग ठने। पास लाश में होए खड़ा तभी प्रत जाए करी मैंने। डरे सत में नहीं भगत जो गोरों से बदले लिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर।
कहा इस भारत देश की कुर्बानी के लिए केवल एक भगत सिंह ही तो नहीं है, राजगुरु सुखदेव नहीं, बल्कि जो मैंने आपके सामने चर्चा प्रारंभ की भजन के माध्यम से कहा, इस देश के लिए आजादी के लिए जिन नौजवानों ने अपना बलिदान दिया।
आजादी की बलि वेदी पर चढ़ी गए जो दीवाने, हम कहते हैं लो उनके अफसाने। अच्छा हम कहते हैं लो उनके वीर भगत सिंह की कुर्बानी, राज गुरु सुखदेव की जानी। उधम सिंह रो सन चापे कर लाला लाजपत बिस्मिल से खर कर गए अपनी अमर कहानी। चूम गए हंसी हंसी करी मैदानी अच्छा कहते भेलो उनके अब महाराणा की शानी को देखो चंपा के बलिदानी को देखो महाराणा की शानी को देखो चंपा के बलिदानी को देखो पर्वती पर्वती तो कर खाई कभी नयन नहीं आंसू आई छात्री के स्वाभिमानी को देखो फिरे भटकते भूखे प्यासे बन बन जंगल छानी अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसानी अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसानी
बल्कि इस देश के लिए धर्म संस्कृति के लिए उठा करके देखें महाराणा प्रताप के इतिहास को अपनी जन्मभूमि को छुड़ाने के लिए यवनों से बचाने के लिए महाराणा प्रताप अंतिम समय तक लड़ता रहा और कहते हैं ऐसी भी स्थिति आई उसके सामने कि जब घर में खाने को भी कुछ भी नहीं मिल जाए कहते हैं महाराणा प्रताप तो घाटी में जाकर के दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं घर में महारानी है बेटी चबा है इतिहासकार लिखता है दो दिन से घर में खाने को कुछ भी तो नहीं बनाए और वो बेटी चंपा जब महाराणा प्रताप जिधर से आते थे रास्ते से अपने वहां बैठी बैठी रहा तकरी के पिता कब आएंगे कुछ खाने को मिलेगा कहते महाराणा प्रताप जब चेतक पर चलते थे तो चेतक के चलने से धूल आकाश तक ऊपर को जाती थी ये चंपा बैठी बैठी देख रही थी कि मेरे पिताजी इधर से आएंगे शाम का समय है सूर्य ढलने वाला है और उधर से चेतक के चलने से जो धूल ऊपर को उड़ती आ रही थी उस धूल को देख करके आज तो बेटी को कुछ आशा बनी ये चंपा उधर को चल दी जैसे आगे को चली जाकर के देखती क्या है कि पिताजी नजदीक आए महाराणा ने अपनी बेटी को देखा चेतक को रोक लिया चेतक को रोक करके नीचे उतरे और अपनी बेटी को जैसे ही गोदी में लिया और वो भी बेटी क्योंकि बेटी का प्यार तो पिता के प्रति विशेष होता है जैसे ही बेटी को गोदी में लिया और वो भी दो दिन की भूखी पिता की गोदी मिली प्यार मिला आज तो बेटी की आंखों में आंसू आ गए जैसे महाराणा ने चंपा की आंखों में आंसुओं को देखा महाराणा प्रताप आए और महारानी से आकर के कहते क्यों आज तक हमारी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आए आज दुखी क्यों है महारानी कहती है तुम्हारी बेटी की आंखों में महाराणा आंसू इसलिए हैं कि दो दिन से इसे एक टुकड़ा भी तो खाने को नहीं मिला है इतिहासकार लिखता है महाराणा के घर में घास की रोटियां बनी तीन रोटियां बनी हैं तीनों रोटियों को लेकर के बैठे हैं एक रोटी महारानी के हाथ में एक चंपा के हाथ में और एक महाराणा खुद लेकर के बैठे और युद्ध की चर्चा चल रही है जिस समय युद्ध की बात कर रहे थे लेखक लिखता है कि बिलाव आया और आकर के चंपा के हाथ से रोटी को छीन करके ले गया ये आप जानते हैं जिस बच्चे को दो दिन में रोटी मिले और हाथ से रोटी छिन जाए जिस समय रोटी छिनी चंपा की चीख निकली चीख निकलने पर महाराणा प्रताप पर रुका नहीं गया अपनी रोटी को बेटी के आगे करके कहते हैं बेटे रोना नहीं मैं जानता हूं भूख बहुत बुरी चीज होती है अरे तुम छत्री की संतान हो ले मेरी रोटी खाओ जिस समय महाराणा प्रताप ने अपनी रोटी आगे को की कमाल है संतान के ऊपर संस्कारों की देन वो बेटी आई पिताजी की रोटी को पिता की तरफ को ही करके और रो करके एक बात कहती है कि पिताजी कभी न लूंगी कभी न लूंगी रोटी आपकी पिता में भूखी सो जाऊंगी कभी न लूंगी कभी न लूंगी रोटी आपकी पिता में भूखी सो जाऊंगी इस रोटी को खा के पिताजी तुम्हें युद्ध में जाना है इस रोटी को खा के पिताजी तुम्हें युद्ध में जाना है मुझको तो चुपके से माँ की गोदी में सो जाना है मंगवा दो तुम मेरे लिए एक छोटी सी कृपाण में भूखी सो जाऊंगी कभी न लूंगी कभी न लूंगी रोटी आपकी पिता में भूखी कहते महाराज प्रताप की बेटी कहती है पिताजी मैं आपकी रोटी को नहीं ले सकती, अगर मैंने रोटी खाई तो आप शत्रु का मुकाबला दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बाजूबंदे कमजोर हो जाएंगे, भुजाएं कमजोर हो जाएंगी, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, आप अपनी रोटी खाइए। और कहते हैं महाराणा प्रताप दुखी हो गया। महाराणा प्रताप ने कागज आदि लिया, कलम लिया और अकबर से संधि पत्र लिखने को बेटा। कहते हैं चंपा ने कागज कलम सभी को छीन लिया और कहा कि तुम हमारी रोटी के लिए किसी के सामने न संधि करोगे न झुकोगे। कहते हैं महाराणा प्रताप चेतक पर दुखी होकर के जा रहा है, ऐसी अवस्था में क्या करे। जिस समय महाराणा प्रताप दुखी होकर के रास्ते में जा रहा था, पीछे से एक आवाज आई और वो आवाज क्या थी,
मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के तुझसे थी हमको आशा, चित्तौड़ लेगा राणा, राणा ने माना भेज अब है कहाँ ठिकाना। तुझसे थी हमको आशा, चित्तौड़ लेगा राणा, राणा ने माना भेज अब है कहाँ ठिकाना। छत्री नहीं वो होता, छत्री नहीं वो होता, रण से कदम हटाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले।
जब पीछे से आवाज आई कि घोड़े पे चेतक पे जाने वाले, अरे मुंह मोड़ करके चल दिया मैदान से। तुझसे तो हमें बहुत उम्मीद थी कि तू चित्तौड़ को आजाद कराएगा, लेकिन आज तू मैदान छोड़ करके जा रहा है। जिस समय इस बात को सुना महाराणा पीछे पीछे को फिर करके देखता है चेतक को रोक करके, तो कौन खड़ा है पीछे।
सुन बात भामा सा की महाराणा चौंकता है, एकदम किया इशारा चेतक को रोकता है। सुन बात भामा सा की महाराणा चौंकता है, एकदम किया इशारा चेतक को रोकता है। सुन ले मेरी कहानी, सुन ले मेरी कहानी, मुझको बुलाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़।
महाराज प्रताप कहता है शेठ भामा साहेब तूने मुझे बुलाया तो है, लेकिन मेरी कहानी तो सुन ले, मैं मैदान छोड़कर के क्यों जा रहा हूँ।
ऐसा है भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे, हथियार कहाँ से लाऊं मेरे पास में न पैसे। ऐसा है भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे, हथियार कहाँ से लाऊं मेरे पास में न पैसे। मजबूरी हो के घर से, मजबूरी हो के घर से बाहर कदम निकाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के
कमाल का वैसे है ये भी सेठ भामा साहेब कहता है महाराज प्रताप से, कमाल है रे छत्री, देश की रक्षा के लिए और छत्री दुखी होकर के जाए कि धन दौलत नहीं है पास में, सेना को खाने के लिए अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, हथियार नहीं है, और इस कमी के कारण तू मुंह मोड़ करके जा रहा है।
धन की कमी के कारण मुहरणी से मोड़ता है अपने परण को राणा जो आज तोड़ता है। धन की कमी के कारण मुहरण से मोड़ता है अपने परण को राणा जो आज तोड़ता है। धन जितना चाहे उतना, धन जितना चाहे उतना घर से मेरे मंगा ले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने।
महाराणा प्रताप से जब कहा कि मेरी धन दौलत किस काम आएगी, अगर आजकल के जैसा राजा होता ना जो पशुओं के चारे भी खा जाए, यूरिया खा जाए, सब कुछ खा जाए, पता नहीं कैसे पच जाता है। अगर आजकल कैसा राजा होता तो कह देता कि कोई चिंता मत कर, तू जितना पैसा मेरे घर भिजवा दे मैं देख लूंगा फिर। लेकिन महाराणा प्रताप स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी होने के साथ साथ महाराणा प्रताप कहता है सेठ भामा साहब से,
लूंगा न एक पाई दुनिया कहेगी सारी, बेजा से मांगता है राणा बना भिखारी। लूंगा न एक पाई दुनिया कहेगी सारी, बेजा से मांगता है राणा बना भिखारी। मजबूरी हो के चाहे, मजबूरी हो के चाहे बच्चे भी जहर खा ले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे जो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के
तो कहा इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म संस्कृति के लिए केवल एक सरदार भगत सिंह नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, बल्कि इस भारत माता की इतिहास में अनेकों नौजवान। और वैसे बात उस वाली है दरअसल में कि जैसे आचार्य जी है ना, इनके लिए अब एक डेढ़ घंटा इनके लिए क्या कुछ भी नहीं। अब हम भी तो शिष्य इनके ही हैं, हम भी कोई कम थोड़ी है, डेढ़ घंटा हमारे लिए भी कुछ नहीं है। किसने पूछा, रहे एक बात बताओ तुम में सरदार कौन सा है। एक बिच्छू कहने लगा, कोई हो से कि पूंछ पे हाथ रख दे वही बता देगा सरदार कौन सा है। यहां कम कोई नहीं है बोलने वालों में, लेकिन समय की सीमाएं हैं। समय की सीमा के आधार पर आइए, दो तीन मिनट में अपने भजन को पूरा किए देता हूं। कहा कि केवल एक महाराणा प्रताप ही तो नहीं इस भारत माता के इतिहास में, और कल फिर जैसा समय मिलेगा आपके सामने चर्चा रखेंगे।
महाराणा की शान को देखो, चंपा के बलिदान को देखो, पर्वत पर्वत ठोकर खाई कभी नयन नहीं आंसू आई, छत्री के स्वाभिमान को देखो फिरे भटकते भूखे प्यासे, बन बन जंगल छाने। अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने, अच्छा हम कहते हैं लो उनके।
माताएं कहेंगी कि श्यामवीर तो पुरुषों की बढ़ाई कर रहा है, लेकिन हम में कोई भी नहीं हुआ।
वीर शिवाजी लक्ष्मी बाई, दुर्गा बन गई दुर्गा माई, वीर शिवाजी लक्ष्मी बाई, दुर्गा बन गई दुर्गा माई, में ना धन्य तुझेरी में ना खूब लड़ी ले कर निधि सेना जलती आग से ना घबराई लाल खंब से लिपट के गाए लाल खंब से लिपट के गाए आजादी के गाने अच्छा कहते हैं लो उनके अफसाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने आजादी की बलि वेदी पर चढ़ गए जो दीवाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके लेखिरा में बंदा बैरागी कैसे याद भुलाई जागी लेखिरा में बंदा बैरागी कैसे याद भुलाई जागी श्रद्धानंद ने गोली खाई वीर गति हकी कतने पाई दयानंद ने दुनिया त्यागी गाएंगे बे मोल सभी के गाएंगे बे मोल सभी के मस्ती भरे तराने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने आजादी की बलि वेदी पर चढ़ गए जो दीवाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने अच्छा हम कहते हैं लो उनके अफसाने।